पृष्ठ संख्या 11, कबीर और आज का समय। आज के भारतीय समाज में उग्र सांप्रदायिकता की आंधी चल रही है। धर्म के नाम पर घृणा, द्वेष और उन्माद का प्रचार प्रसार हो रहा है। जाति भेद खूंखार जाति युद्ध बन रहा है। तरह तरह के दुराग्रहों, कट्टरताओं और संकीर्णताओं का बोलबाला है। स्थिति इतनी भीषण हो गई है कि कबीर की साखियां जलाई जा रही हैं। यह सब देखकर मन में कई सवाल उठते हैं। क्या हम उसी समाज में हैं जिसमें कभी कबीर पैदा हुए थे? क्या हम भारतीय समाज के उत्तर कबीर युग में जी रहे हैं? ऐसे समय में कबीर को याद करना स्वाभाविक है और जरूरी भी। कबीर जिस समय भारतीय समाज में पैदा हुए थे, वह बहुत उथल-पुथल का समय था। उसमें संस्कृति, धर्म और विचार की अनेक तेज धाराएं परस्पर टकरा रही थीं। एक ओर हिंदू समाज की भेदभाव पर आधारित जाति व्यवस्था की संरचना थी, उस संरचना की शक्ति का स्रोत शास्त्रीय धर्म था। उस संरचना और धर्म के विरुद्ध विद्रोह करते हुए आगे आए बौद्ध, जैन, शाक्त, सिद्ध और नाथ आदि धर्म तथा मत थे। दूसरी ओर इस्लाम था, जिसमें उग्रता थी। उसमें धार्मिक स्तर पर समानता के बावजूद सामाजिक विषमता थी। उसके विरुद्ध प्रेम की पीर का संदेश देने वाले सूफी संत थे। साधारण जनता इस भंवर जाल में फंसी हुई थी। हिंदू जनता जिस तरह जाति व्यवस्था के भेदभाव और धार्मिक कर्मकांड की चक्की में पिस रही थी, उसी तरह मुस्लिम जनता इस्लाम की कट्टरता और कर्मकांड की चक्की में। इन दोनों के ऊपर राजसत्ता और शोषण का चक्र चल रहा था। ऐसी सर्वग्रासी चक्की में पीसी जाती हुई जनता को देखकर कबीर ने कहा होगा, चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोए। उस कठिन समय में भारतीय मनुष्य की मनुष्यता खतरे में थी। वह हिंदू या मुसलमान होकर अपनी चेतना और संवेदना को धर्म के हाथों गिरवी रखकर ही बच सकता था। उसकी स्वतंत्रता और मनुष्यता की रक्षा का कोई मार्ग नहीं दिखाई दे रहा था। हिंदू और इस्लाम की शास्त्रीयता से स्वतंत्र जो धार्मिक मत और सांप्रदाय लोकधर्म के रूप में प्रचलित थे, वह भी अनेक प्रकार के भ्रमों का निर्माण करते थे। पृष्ठ संख्या 12। ऐसे समय में एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो उस काल के भारतीय समाज की समग्रता को जानता हो। हिंदू और इस्लाम दोनों धर्मों की वास्तविकता को और लोकधर्म के भ्रमों से भी परिचित हो, साथ ही मनुष्य की मनुष्यता में जिसकी अटूट आस्था हो। ऐसे ही व्यक्ति थे कबीर। उनके काव्य में उस समय की जटिल स्थिति का बोध है और उसके बीच से अपनी स्वतंत्र दृष्टि और नई राह बनाने का साहस, संकल्प और विवेक भी है। उनमें हिंदू और इस्लाम की रूढ़ियों, संकीर्णताओं और कट्टरताओं के विरुद्ध खड़े होने की जैसी दृढ़ता थी, वैसी ही सच को कहने और गाने की निर्भीकता भी थी। उन्होंने कहा था, सांच ही कहत और सांच ही गहत है, कांच तू त्याग कर सांच लागा। कहाँ कबीर यू भक्त निर्भय हुआ, जन्म और मरण का भर्म भागा। कबीर जिस सांच को कहने और गाने की घोषणा करते हैं, वह मूलतः मानुष सत्य है। वही मानुष सत्य संपूर्ण भक्ति आंदोलन का केंद्रीय सत्य है। इसीलिए चंडीदास ने कहा था, सुनह मानुष्य भाई, शाबर उपरे मानुष सत्य ताहर ऊपर नाई। कबीर को यह सत्य किसी ग्रंथ वेद या कुरान से नहीं मिला था, वह उन्हें अपने समय और समाज के मानव जीवन के अनुभव से मिला था। इसीलिए उसे वह अनभय सांचा कहते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार अनभय सांचा का अर्थ है अनुभव का सत्य और अनभय सत्य भी। असल में अनुभव से पाया हुआ सत्य ही अनभय या निर्भय सत्य होता है, किसी से मिला हुआ सत्य नहीं। जीवन के विभिन्न प्रयोगों में सत्य का अनुभव तो बहुत लोगों को होता है, लेकिन कभी शास्त्र के भय से और कभी लोक के डर से उसे कहने का साहस सब में नहीं होता। बिरला ही कोई निर्भय होकर अपने अनुभव का सत्य सबसे कहता है, वही कबीर होता है, कल, आज और कल भी। कबीर अपने अनुभव के सत्य के रूप और लक्ष्य को शास्त्र के सत्य से अलगाते हुए कहते हैं, मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होए रे। मैं कहता हूँ आखिन देखी, तू कहता कागद की लेखी। मैं कहता सुरझावन हारी, तू राखा उरझोय रे। पृष्ठ संख्या 13। मैं कहता तू जागत रहना, तू रहता है सोए रे। मैं कहता निर्मोही रहियो, तू जाता है मोए रे। ऐसे सच को पाने के लिए कबीर ने उस समय के भारतीय समाज में मनुष्य की पहले से बनी बनाई पहचान को अस्वीकार किया। उस समय की समाज में मनुष्य की पहचान के दो आधार थे, एक था धर्म जिसके अनुसार प्रत्येक मनुष्य हिंदू या मुसलमान था, दूसरा आधार जाति भेद का था जिसके अनुसार मनुष्य ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र था। कबीर ने ना तो किसी धर्म को अपनी पहचान का आधार माना और न जाति को। उन्होंने केवल मनुष्य के रूप में अपनी पहचान समाज के सामने रखते हुए कहा था, हिंदू कहो तो मैं नाहीं, मुसलमान भी नाहीं, पांच तत्व का पुतला गैवी खेले माही। साथ ही वह यह भी घोषणा करते हैं, हम बासी उस देश के जहाँ जाति बरन कुल नाही। इस तरह कबीर ने मनुष्य को पहले से प्रचलित धर्म जाति और कुल के ऊंच नीच के भेदभाव से मुक्त मनुष्य के रूप में देखने की दृष्टि विकसित की और उसी मूलगामी दृष्टि से हिंदू और इस्लाम दोनों धर्मों, उनके आधार ग्रंथों, उन ग्रंथों से निकली सामाजिक व्यवस्थाओं और उन व्यवस्थाओं की रूढ़ियों की आलोचना की, क्योंकि इन सबसे मानव समाज में तरह तरह के भेद पैदा होते हैं। ऐसा भेद विगूचन भारी, वेद कतेब दीन अरु दुनिया, कौन पुरुष कौन नारी। एक रुधिर एक मलमूत्र, एक चरम एक गुदा, एक बूंद तय सृष्टि रची है, कौन वाहमन कौन सूदा। रजगुण ब्रह्मा तम गुण शंकर, सतगुण हरि है सोई। कहे कबीर एक राम जपहु रे, हिंदू तुरक न कोई। कबीर की कविता की दो बुनियादी विशेषताएं हैं, अथक आलोचनात्मक चेतना और प्रश्न की प्रवृत्ति। उनकी आलोचनात्मक चेतना मूलगामी है, वह जनता को जगाने वाली है और रूढ़ियों को चुनौती देने वाली। इस आलोचना की एक विशेषता है प्रश्न करने की प्रवृत्ति। यह प्रवृत्ति जितने प्रखर कबीर की कविता में है, उतनी उस काल के किसी अन्य कवि की कविता में नहीं। उस समय का समाज, उसका धर्म और उसकी व्यवस्था का कोई ऐसा पक्ष नहीं है जो कबीर के प्रश्नों से बच पाया हो। वह भौतिक यथार्थ के बारे में प्रश्न करते हैं और आधिभौमिक संभावनाओं के बारे में भी। सामाजिक व्यवस्था से जुड़े हुए प्रश्न पूछते हैं और मानसिक अवस्था से जुड़े प्रश्न भी।